एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी श्रोताओं का स्वागत। आज हम एक ऐसी बिजनेस किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने कई सालों से लीडर्स और उद्यमियों को मतलब बहुत प्रेरित किया है। बिल्ट टू लास्ट, सक्सेसफुल हैबिट्स ऑफ विजनरी कंपनीज।
नमस्कार।
हाँ, ये किताब जिम कॉलिंस और जेरी पोरस की। ये उन कंपनियों के बारे में है जो सिर्फ कुछ सालों के लिए नहीं बल्कि दशकों, सोचिए सदियों तक भी कामयाब रहीं।
सदियों तक मतलब ऐसी कंपनियां बनाना जो आपके जाने के बाद भी फलती फूलती रहें।
बिल्कुल। और आज के जमाने में जहां चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं, ये सवाल तो और भी जरूरी हो गया है ना कि भाई ये स्थायी सफलता आती कहां से है, क्या है इसका नुस्खा?
सही बात है, क्या ये बस किस्मत है या कोई सोचा समझा तरीका है?
यहीं पर लेखक आते हैं, जिम कॉलिंस और जेरी पोरस।
हाँ, और ये सिर्फ अपनी राय देने वाले गुरु नहीं है। जेरी पोरस वो स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में संगठनात्मक व्यवहार के मतलब काफी लंबे समय तक प्रोफेसर रहे हैं। उन्होंने इस काम में अकेडमिक गहराई डाली है।
और जिम कॉलिंस जो पहले पोरस के स्टूडेंट थे, फिर खुद स्टैनफोर्ड में फैकल्टी बने। उनकी खासियत है कि वो मुश्किल रिसर्च को बड़े सिंपल यादगार कॉन्सेप्ट्स में बदल देते हैं। ये बिल्ड टू लास्ट उनकी पहली बड़ी हिट थी, इसके बाद तो गुड टू ग्रेट भी आई।
हाँ, और सबसे बड़ी बात है उनका तरीका, ये कोई हवा हवाई बातें नहीं है। स्टैनफोर्ड में 6 साल लगाकर रिसर्च की उन्होंने।
6 साल?
हाँ, 6 साल। 18 विजनरी कंपनियों को स्टडी किया, और ये वो कंपनियां हैं जिनकी औसत स्थापना पता है कब हुई थी? करीब 1897 में।
अरे बाप रे, 19वीं सदी के अंत में।
बिल्कुल। और सबसे मजेदार बात, उन्होंने हर विजनरी कंपनी की तुलना उसी इंडस्ट्री की एक और अच्छी कंपनी से की जो उतनी महान नहीं बन पाई।
अच्छा, ये कंपैरिजन वाला एंगल बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब सिर्फ ये नहीं कि सक्सेसफुल कंपनियां क्या करती हैं।
हाँ, बल्कि ये कि वो उन कंपनियों से अलग क्या करती हैं जो ठीक ठाक रहीं पर वो विजनरी वाला लेवल नहीं छू पाई।
तो इस किताब का निचोड़ क्या है, इसका मतलब मेन आइडिया?
ये किस बड़ी धारणा को चैलेंज करती है?
हाँ।
सबसे बड़ी धारणा शायद यही है कि महान कंपनियां किसी एक करिश्माई लीडर या फिर किसी जबरदस्त शुरुआती आइडिया के दम पर बनती हैं। किताब कहती है, नहीं रुकिए, ये पूरी कहानी नहीं है।
अच्छा, तो फिर क्या है पूरी कहानी?
लेखक कहते हैं कि सबसे स्थायी, सबसे टिकाऊ कंपनियां वो हैं जो एक विजनरी संगठन बनाती हैं।
विजनरी संगठन?
हाँ, मतलब वो सिर्फ एक प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बनाते, वो एक पूरी व्यवस्था, एक कल्चर, एक मशीन बनाते हैं जो अपने आप चलती रहे और समय के साथ बेहतर होती जाए।
अच्छा, भले ही लीडर बदल जाए या वो शुरुआती आइडिया पुराना पड़ जाए।
एग्जैक्टली। इसी को वो कहते हैं क्लॉक बिल्डिंग, नॉट टाइम टेलिंग।
क्लॉक बिल्डिंग, नॉट टाइम टेलिंग। हाँ, सुना है।
घड़ी बनाना सिर्फ समय बताना नहीं।
बिल्कुल।
मतलब लीडर का असली काम, या कहें कि उसकी असली भूमिका, वो सिर्फ हीरो बनकर आज सही फैसला लेना नहीं है, बल्कि एक ऐसी घड़ी बनाना है जो कल, परसों, सालों बाद भी सही फैसले लेती रहे। जैसे एचपी के फाउंडर्स ने, उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाया, उन्होंने एचपी वे बनाया, काम करने का एक तरीका, एक संस्कृति।
ये तो सोचने का तरीका ही बदल देता है, मतलब फोकस लीडर से हटकर सिस्टम पर आ गया।
हाँ, ये एक बुनियादी शिफ्ट है। और ये घड़ी बनाने के लिए कुछ खास सिद्धांत हैं, कुछ पैटर्न्स हैं जो इन विजनरी कंपनियों में बार बार दिखे,
और यहीं से किताब की असली लर्निंग शुरू होती है।
और कई मिथक टूटते हैं।
हाँ, जैसे वो एक मिथक की आपको हमेशा मुश्किल चुनाव करने पड़ते हैं, या तो ये चुनो या वो। किताब इसे टायरनी ऑफ दी और कहती है ना, या का अत्याचार।
बिल्कुल। और विजनरी कंपनियां इससे बचती हैं, वो और की जगह एंड को अपनाती हैं, द जीनियस ऑफ द एंड, और की प्रतिभा।
और की प्रतिभा मतलब?
मतलब वो मानती हैं कि आप एक ही समय में दो विरोधाभासी लगने वाली चीजें हासिल कर सकते हैं, आपको चुनना नहीं है। जैसे आप उद्देश्य पर भी फोकस कर सकते हैं और मुनाफा भी कमा सकते हैं।
अच्छा।
आप स्थिरता भी बनाए रख सकते हैं और जबरदस्त प्रगति भी कर सकते हैं। आप कर्मचारियों को आजादी भी दे सकते हैं और उनसे जिम्मेदारी की उम्मीद भी कर सकते हैं।
उद्देश्य और मुनाफा, ये बात बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि आमतौर पर तो यही माना जाता है ना कि बिजनेस का पहला लक्ष्य तो पैसा कमाना ही होता है।
हाँ, और यहीं पर एक और बड़ा आइडिया आता है, मोर देन प्रॉफिट्स, मतलब मुनाफे से बढ़कर कुछ। रिसर्च में साफ दिखा कि इन विजनरी कंपनियों के लिए पैसा कमाना कभी पहला या एकमात्र मकसद नहीं रहा, उनका कुछ और था, एक कोर आइडियोलॉजी।
कोर आइडियोलॉजी, ये क्या चीज है?
इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो कोर वैल्यूज यानी वो बुनियादी सिद्धांत, वो मान्यताएं जिन पर कंपनी कभी किसी भी हालत में समझौता नहीं करती, चाहे कितना भी नुकसान उठाना पड़े।
पैसा कमाने के अलावा वो बड़ा लक्ष्य क्या है जिसके लिए कंपनी जीती है, सांस लेती है?
कोई उदाहरण है इसका?
हाँ, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन का क्रेडो है, वो साफ कहता है कि उनकी पहली जिम्मेदारी डॉक्टरों, नर्सों, मरीजों के प्रति है, शेयर होल्डर से भी पहले। या जैसे मर्क फार्मा का उद्देश्य है मानव जीवन को बचाना और बेहतर बनाना। ये सिर्फ बात नहीं है, ये उनके फैसलों में दिखता है। और किताब में एक बड़ी पावरफुल लाइन है, वो कहते हैं, हमने नहीं पाया कि शेयर होल्डर वेल्थ को बढ़ाना या मुनाफे को अधिकतम करना ही विजनरी कंपनियों का मुख्य या एकमात्र उद्देश्य रहा है।
कमाल है।
मतलब उद्देश्य पर फोकस करने से लंबे समय में मुनाफा शायद ज्यादा आता है। पर एक सवाल है, ये कंपनियां अपनी इस आइडियोलॉजी को, मतलब अपने कोर को बनाए कैसे रखती हैं, खासकर जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही हो?
बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब उनके अगले सिद्धांत में छिपा है, प्रिजर्व द कोर स्टिम्युलेट प्रोग्रेस।
प्रिजर्व द कोर स्टिम्युलेट प्रोग्रेस,
हाँ, मूल को सहेजें और प्रगति को बढ़ावा दें। ये कंपनियां क्या करती हैं, अपनी कोर आइडियोलॉजी यानी वैल्यूज और पर्पस, उसको लेकर बिल्कुल कट्टर होती हैं, उसे कभी नहीं बदलती, वो पत्थर की लकीर है।
ठीक है,
लेकिन बाकी सब कुछ, उनकी स्ट्रैटेजी, उनके प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस, काम करने का तरीका, उन सब चीजों में वे लगातार बदलाव लाती हैं, तरक्की करती हैं, एक्सपेरिमेंट करती हैं।
अच्छा, तो मतलब जड़ें मजबूत रखो पर शाखाएं फैलने दो। हाँ। जैसे डिज्नी का उदाहरण आपने दिया था, कोर वैल्यू कल्पना और मनोरंजन वही रही।
बिल्कुल, पर माध्यम बदलते गए, कार्टून से फिल्में, फिर थीम पार्क, फिर मर्चेंडाइज, अब स्ट्रीमिंग, सब कुछ बदल गया, पर वो कोर आइडिया वही है। और इस प्रोग्रेस को, इस बदलाव को तेज करने के लिए, उसको दिशा देने के लिए वे एक और जबरदस्त टूल इस्तेमाल करती हैं।
वो क्या है?
बिग हैरी ऑडेशियस गोल्स, शॉर्ट में बैग्स।
बिग हैरी ऑडेशियस गोल्स, ये नाम ही बड़ा मजेदार है,
है ना? इसका मतलब है बड़े मुश्किल और थोड़े दुस्साहसी लगने वाले लक्ष्य। ये सिर्फ अगले क्वार्टर या अगले साल के टारगेट नहीं है।
तो क्या है ये?
ये 10 साल, 20 साल, यहाँ तक कि 30 साल वाले बड़े सपने होते हैं। इतने बड़े कि वो पूरी कंपनी को जोश से भर दें, एक दिशा में लगा दें, और अक्सर इतने बड़े कि पहली बार सुनने में शायद नामुमकिन लगे।
नामुमकिन लगे, जैसे?
जैसे 1960 के दशक में बोइंग ने तय किया कि वो 747 जैसा विशालकाय विमान बनाएंगे। उस वक्त ये लगभग कंपनी को दांव पर लगाने जैसा था।
या सोचिए नासा का लक्ष्य कि दशक खत्म होने से पहले चांद पर इंसान भेजना है।
हाँ, वो तो जबरदस्त भाग था।
बिल्कुल, किताब कहती है, एक भाग स्पष्ट और सम्मोहक होता है जो प्रयास के लिए एक एकीकृत केंद्र बिंदु का काम करता है। ये सिर्फ एक लक्ष्य नहीं रहता, ये एक मिशन बन जाता है, एक जुनून बन जाता है। ये बड़े लक्ष्य और वो मजबूत कोर आइडियोलॉजी, ये सब मिलकर शायद एक खास तरह का कल्चर भी बनाते होंगे कंपनी में।
हाँ बिल्कुल, और यहीं पे एक और दिलचस्प, शायद थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा कॉन्सेप्ट आता है, कल्ट लाइक कल्चर्स।
कल्ट लाइक मतलब पंथ जैसा, ये तो थोड़ा नेगेटिव साउंड करता है।
हाँ, सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर इसका मतलब नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब है कि इन विजनरी कंपनियों की संस्कृति इतनी मजबूत, इतनी अलग, इतनी इंटेंस होती है कि या तो लोग उसमें पूरी तरह फिट हो जाते हैं, रम जाते हैं और जुनून से काम करते हैं।
अच्छा।
या फिर उन्हें जल्दी ही समझ आ जाता है कि भाई ये जगह मेरे लिए नहीं है, और वो छोड़ देते हैं। बीच का रास्ता, मतलब ढुलमुल रवैया नहीं चलता।
तो ये एक तरह से फिल्टर का काम करता है, जो फिट नहीं होते वो बाहर।
एग्जैक्टली, ये दिखाता है कि कंपनी अपने मूल्यों को लेकर कितनी स्पष्ट और सीरियस है। जैसे डिज्नी के कर्मचारी खुद को कास्ट मेंबर कहते हैं, या नॉर्थस्ट्रोम, एक डिपार्टमेंट स्टोर है, अपने ग्राहक सेवा के जुनून के लिए जाना जाता है।
ये सब तो बड़ी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी वाली बातें लग रही हैं, मतलब हर चीज सोच समझ कर की जाती होगी?
हमेशा नहीं। यहीं पर एक और मिथक टूटता है, वो ये कि सफलता हमेशा टॉप डाउन बड़ी बड़ी योजनाओं से ही आती है। किताब का एक और सिद्धांत है, ट्राई अ लॉट ऑफ स्टफ एंड कीप व्हाट वर्क्स।
ट्राई अ लॉट ऑफ स्टफ मतलब बहुत कुछ आजमाओ और जो काम करे उसे रखो।
हाँ, ये कंपनियां अक्सर परफेक्ट प्लान का इंतजार नहीं करती, वे बहुत सारे छोटे छोटे प्रयोग करती हैं, गलतियां करती हैं, उनसे सीखती हैं, और फिर जो चीजें काम करने लगती हैं उन पर ज्यादा जोर देती हैं।
अच्छा, मतलब इवोल्यूशन जैसा।
बिल्कुल, जैसे डार्विन का सिद्धांत होता है ना, वैसा ही कुछ। इसे आप इवोल्यूशनरी प्रोग्रेस कह सकते हैं। जैसे 3M का मशहूर 15% टाइम रूल है, जहां कर्मचारी अपने समय का कुछ हिस्सा अपने मनपसंद प्रोजेक्ट्स पर लगा सकते हैं। पोस्ट इट नोट्स वहीं से निकले थे, किसी बड़े प्लान से नहीं, एक छोटे एक्सपेरिमेंट से।
वाह, ये तो काफी आजादी वाली बात हुई। लेकिन लीडरशिप का क्या? क्या इन कंपनियों को महान बनाने के लिए बाहर से बड़े बड़े नाम वाले CEO लाए गए? ये भी तो एक आम धारणा है।
हाँ है, पर रिसर्च इसके बिल्कुल उलट दिखाती है। एक और बहुत जरूरी खोज है होम ग्रोन मैनेजमेंट।
होम ग्रोन मैनेजमेंट मतलब घर में तैयार नेतृत्व।
एग्जैक्टली। विजनरी कंपनियां लगभग हमेशा, मतलब 90% से ज्यादा बार, अपने लीडर्स को अंदर से ही तैयार करती हैं और प्रमोट करती हैं। बाहर से CEO लाना उनके लिए बहुत ही रेयर होता है।
अरे, ये तो चौंकाने वाली बात है। क्यों?
शायद इसलिए क्योंकि अंदर से बड़े हुए लीडर कंपनी की कोर आइडियोलॉजी, उसकी संस्कृति, उसके मूल्यों को गहराई से समझते हैं, वो उसे जीते हैं। उनकी भूमिका सिर्फ कंपनी चलाना नहीं होती, बल्कि उसकी आत्मा को, उसके कोर को जीवित रखना और आगे बढ़ाना भी होती है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, P&G, इसका क्लासिक उदाहरण है। वो शायद ही कभी बाहर से टॉप लीडर लाते हैं।
और शायद यही वजह है कि ये कंपनियां कभी संतुष्ट नहीं होती। मतलब जब सब कुछ अंदर से ही हो रहा है तो एक अंदरूनी ड्राइव बनी रहती होगी।
बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। आखिरी सिद्धांत इसी से जुड़ा है, गुड इनफ नेवर इज।
गुड इनफ नेवर इज,
अच्छा कभी काफी नहीं होता।
हाँ,
इन कंपनियों में एक अजीब सी बेचैनी होती है, लगातार खुद को बेहतर बनाने की एक अंदरूनी आग। भले ही वो मार्केट में नंबर 1 हो, भले ही बाहर से कोई दबाव न हो, वो हमेशा खुद से सवाल पूछती रहती हैं, हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, हम खुद को कैसे चुनौती दे सकते हैं। वे ऐसी व्यवस्थाएं बनाती हैं जो लगातार सुधार को बढ़ावा देती हैं, वो कभी आराम से नहीं बैठती।
वाह, ये सारे सिद्धांत मिलकर एक जबरदस्त तस्वीर बनाते हैं। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो कुछ मुख्य संदेश, कुछ की टेकअवेज क्या होंगे?
मेरे ख्याल से पहला और शायद सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि संस्था का निर्माण व्यक्तिगत नायकत्व से ज्यादा महत्वपूर्ण है। असली लीडर वो घड़ी बनाने वाला होता है, टाइम टेलर नहीं। लीडर की भूमिका खुद स्टार बनना नहीं, बल्कि एक स्टार बनाने वाली मशीन बनाना है।
हाँ, ये क्लॉक बिल्डिंग वाला पॉइंट। दूसरा,
कोर आइडियोलॉजी की ताकत। मतलब उद्देश्य और मूल्य सिर्फ दीवार पर लिखने के लिए नहीं है, वो असली चीज है। पैसा जरूरी है, बिल्कुल है, पर स्थायी प्रेरणा, पहचान और हाँ, लंबे समय में सफलता भी एक गहरे मकसद और अटूट मूल्यों से आती है। इनका लक्ष्य सिर्फ पैसा नहीं होता।
जैसे भारत में टाटा समूह का उदाहरण आपने दिया, उनके मूल्य ही उनकी पहचान है। तीसरा क्या होगा?
तीसरा, वो स्थिरता और प्रगति का संतुलन साधना। प्रिजर्व द कोर, स्टिमुलेट प्रोग्रेस। अपनी जड़ों को, अपने कोर को कस के पकड़ो, लेकिन बाकी सब कुछ बदलने, नया करने, आगे बढ़ने के लिए तैयार रहो। ये एंड वाली सोच बहुत जरूरी है, खासकर आज की दुनिया में।
सही है। चौथा?
चौथा ये कि बड़ी सफलताएं अक्सर सीधे रास्ते से नहीं आती, वो प्रयोगों, गलतियों से सीखने और अनुकूलन से आती हैं। ट्राई अ लॉट ऑफ स्टफ। हमेशा बड़े प्लान के पीछे मत भागो, छोटे छोटे कदम उठाओ, देखो क्या काम करता है और फिर उस पर आगे बढ़ो।
ये स्टार्टअप कल्चर जैसा है थोड़ा। और पांचवा?
और पांचवा, अंदर से लीडरशिप तैयार करना और एक मजबूत, थोड़ी कल्ट जैसी ही सही, पर एकीकृत संस्कृति बनाना। ऐसी संस्कृति जहां लोग कंपनी के मूल्यों से गहराई से जुड़े हों और उन्हें जी सकें।
ये सारे सिद्धांत बहुत पावरफुल हैं, पर सवाल ये उठता है कि इन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने काम में कैसे उतार सकते हैं? मतलब ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के CEOs के लिए तो नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई बिजनेस चला रहा है या मैनेजर है, टीम लीड कर रहा है, तो वो खुद से पूछ सकता है, मेरी भूमिका क्या? सिर्फ आज के टारगेट पूरे करना है या मैं एक स्थायी घड़ी बनाने में भी मदद कर रहा हूँ? मेरी टीम या कंपनी की कोर आइडियोलॉजी क्या है? क्या वो स्पष्ट है? हमारा अगला बोल्ड लक्ष्य, भैग क्या हो सकता है, चाहे छोटा ही क्यों ना हो? क्या हम नए आइडियाज को, प्रयोगों को बढ़ावा दे रहे हैं? क्या हम अपनी टीम के लोगों को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं?
और अगर कोई कर्मचारी है इंडिविजुअल लेवल पर,
तो वो भी सोच सकता है, मेरे व्यक्तिगत मूल्य क्या हैं? क्या वो मेरी कंपनी के मूल्यों से मेल खाते हैं? क्योंकि अगर नहीं खाते तो शायद लंबे समय तक वहां टिकना मुश्किल होगा। फिर मैं अपनी भूमिका में, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, कैसे क्लॉक बिल्डिंग में योगदान दे सकता हूँ? क्या मैं प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दे सकता हूँ? क्या मैं नए आइडियाज शेयर कर सकता हूँ? क्या मैं अपने साथियों को सीखने में मदद कर सकता हूँ? ये सोच हर लेवल पे अप्लाई होती है।
ये बात सही है। मेरे लिए इस पूरी चर्चा में सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि महान कंपनियां जरूरी नहीं कि किसी महान आइडिया के साथ शुरू हुई हों। कई बार तो उनके शुरुआती आइडियाज फ्लॉप भी हुए। उनका असली फोकस एक महान संस्था बनाने पर था। कंपनी खुद ही उनका पहला प्रोडक्ट थी, उनका पहला आविष्कार थी।
हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है, और मेरे लिए वो प्रिजर्व द कोर्स स्टिमुलेट प्रोग्रेस वाला आइडिया बहुत रेजोनेट करता है। ये दिखाता है कि आपको बदलाव से डरने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आपकी बुनियाद, आपके मूल्य, आपका उद्देश्य मजबूत हो और आप उसे पकड़े रहें। यही संतुलन है जो स्थायी सफलता लाता है। ये किताब वाकई ये सिखाती है कि महानता कोई तुक्का नहीं है, ये चॉइस है, ये सोचे समझे लगातार किए गए प्रयासों का नतीजा है।
सच में ये विचार सोचने पर मजबूर करते हैं। एक अंतिम विचार जो श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है वो शायद ये है, अगर कोई सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ स्थायी बनाना चाहता है, चाहे वो एक कंपनी हो, एक टीम हो या शायद अपनी खुद की व्यक्तिगत विरासत, तो आज वो कौन सी एक घड़ी बनाने पर काम शुरू कर सकता है? वो कौन सा छोटा कदम हो सकता है जो उस दिशा में जाए?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एक्टर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।